ॐ शरवदं रूपं सर्वहस्तुम् एतानि अत्यं हनुमानहं पद्यं हनुमते दिव्यहस्तुं प्रतस्थरामः दूतहं प्रदानिहम् ॐ ह्रीं श्रीं नमो अरिहन्तानं ॐ हन हनुमते नमः पूज्यानि सर्वहस्तुं शरवदेः शरोशतिश्च कण्ठे वसिश्च भूजे काले गृहे लक्ष्मीश्च मुखं गणेशं हृदय मुरारि जय देवि चरणारविन्दम् सर्वदम सर्वहस्तुम सर्वस्वरूपम सर्वदेह। विश्व के धर्म के अद्वात प्रतोतक के निधितात निधिताओं के सम्यक प्रताद सध्यात अतुतम पद्यत तिक्ष के अरुणातप्य परुणात पद्य शहास्त्र के सद्वत इस धर्म के प्रतत सूर्योदय के समात कलित कमलिनी कलिका लब की छटा से सुशोभित अध्यात परिताओं की परम प्रदत्त सभ्य अतिताओं की धर्म के तत्यात भक्त शिरोमणि भगवान हनुमान के परमात्मा हनुमान के जयंती पर आज यहां विराजित मेरे बंबे वासियों और भारत के कोने कोने से पधारे मेरे सखा मेरे भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं हनुमान के चरणों में नमन करते हुए आप सबका भारत के सबसे पुरातन प्रथा सन्यासी प्रथा की तरफ से अभिनंदन करता हूं। मेरे बंधुओं, आज भगवान हनुमान जयंती भगवान के जयंती पर आए हैं और भारत विचित्र देश है। दोनों को महावीर कहा, एक महावीर को महावीर कहा, उनको भगवान को महावीर कहा कि जिसने कभी मच्छर को भी नहीं मारा उसको भी इस देश ने महावीर कहा, और दूसरे हनुमान को भी महावीर कहा जिसने किसी को नहीं छोड़ा। क्या देश है, क्या विचित्र देश है। मुझे तो लगता है कि ऐसा कोई देश ही नहीं होगा जो इतनी बड़ी सोच, जिसने मच्छर को नहीं मारा उसको भी महावीर कहा और जिसने किसी को नहीं छोड़ा उसको भी महावीर कहा। अब एक ही बड़ी सुंदर बात है, बड़ी सूक्ष्म बात है, कहा कि एक ने सारे दुश्मनों को मिटा दिया, इन्होंने सारे दुश्मनों को मिटा दिया। जितने धर्म के दुश्मन थे, जितने धर्म विरोधी थे, दुश्मन थे, मानवता के दुश्मन थे, उस सारे दुश्मनों को हनुमान ने मिटा दिया और महावीर ने सारे दुश्मनी को मिटा डाला। दुश्मनी मिटा, दुश्मन मिटे, दुश्मन मिटा, दुश्मनी मिटा। मेरे बंधुओं, इतनी पहचान, इतनी पारखी पहचान किसी और देश के हो ही नहीं सकती, दृष्टि हो ही नहीं सकती। यही कारण है सारे भगवान यहीं आकर के अवतरित हुए, जन्म लिए। यही कारण है कि हमने भारत को माता कहा, भारत माता। आप जानते हो हमारे जीवन में दो तरह के युग हैं, एक भौतिक युग और एक आध्यात्मिक युग। भौतिक युग, आध्यात्मिक युग, ये युग भौतिक है। आध्यात्मिक युग जो तुम धर्म करते हो, अध्यात्म जहां तेरी मांग मोक्ष होती है। और भौतिक युग में आदमी सबसे बड़ा क्या बनना चाहता है, राजा, वहां का राजा हो जाए, या धन में राजा हो जाए, बल में राजा हो जाए, बुद्धि में राजा हो जाए, या राजनीति में राजा हो जाए, कैसे भी, मतलब सबसे टॉप में होना चाहता है, राजा बनना चाहता है भौतिक युग में। और आध्यात्मिक युग में आदमी भगवान से मिलना चाहता है, भगवान हो जाना चाहता है, मोक्ष चाहता है कि मुक्ति मिल जाए, ये सबसे अंतिम जी मोक्ष है तो मोक्ष पाना चाहता है। और ये सब अलग अलग, हमारे जो भगवान है, किसी के पास जाओ तो मोक्ष दिला देंगे, किसी के पास जाओ तो राजा बना देंगे, कुबेर के पास राजा बना देंगे, किसी के पास गए तो मोक्ष दिला देंगे। लेकिन हनुमान एक ऐसे भगवान हैं कि जिनके पास जाने से वो भौतिक युग का राजा बना देते हैं और आध्यात्मिक युग में भगवान से मिला देते हैं, मोक्ष दिला देते हैं। एक ही भगवान है जो दोनों करा देते हैं, कहते हैं तुम रो मंत्र विभीषण माना भय लंकेश सब जग जाना, तेरी बात विभीषण मान गया, लंकेश हो गया, राजा भी बन गया, राम से भी मिला, सारा लोग जान गया। तुम उपकार सुग्रीव पर किन्ना, राम मिलाई राजपद दिन्ना। तुमने बड़ी उपकार किया हनुमान, बड़ी उपकार रही तेरी, तुम राम से भी मिला दिए सुग्रीव को और राजा भी बना दिए। तो अगर इस दोनों युग में तुमको सबसे बड़ा बनना है, इस दोनों स्थिति में, भौतिक युग में भी और आध्यात्मिक युग में भी, भौतिक में भी और आध्यात्मिकता में भी, दोनों में अगर टॉप पर जाना है तो तुम्हें पांव हनुमान का पकड़ना होगा, पकड़ना होगा। कि हनुमान का क्या अर्थ है, हनुमान, हन मतलब जो हमारे हंता हो, मान मतलब अहंकार, जो मेरे अहंकारों को मिटाता हो, और ह, अब आ जाओ ह, ह का अर्थ होता है हन, हन्ना, मिटाना। और न का अर्थ होता है नील, कि जो हमारे अहंकारों को, हमारे दुश्मनों को, जो हमारी बुराइयां हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार, दुश्मन कौन है इस दुनिया में? दूसरा दुश्मन नहीं होता है, दुश्मन हम स्वयं का होते हैं। हमारी क्रोध दुश्मन हो जाती है, हमारी अहंकार दूसरे से दुश्मन बना देती है, हमारी लोभ दूसरे से दुश्मन बना देती है, हमारा काम दूसरे से दुश्मन बना देता है। काम क्रोध लोभ अहंकार ईर्ष्या मद, यही चीज तो दुश्मन बनाता है, यही चीज है। या किसी की हो, या सामने वाले की हो, या तुम्हारी हो, इसके अलावा कोई भी दुश्मन नहीं बनाता है। तो इस जो हमारे सारे इन विकारों को, इवितरागों को खत्म कर देता हो, मिटा देता हो, जो हमारे सारे दुश्मन को मिटा देता हो, फिर आता है नौ। हनुमान में ह नौ, नौ का अर्थ होता है नीर, जल, जो उसको मिटा करके, जला करके फिर उसको धो देता हो, साफ कर देता हो, जल दे देता हो, जो जीवन में शीतलता दे देता हो, जो पवित्र भी कर देता हो, और फिर आता है ऊ, और उसको शीतल करके ऊपर उठा देता हो, जीवन को स्वर्णिम कर देता हो, अध्यात्म युग में भगवान के पास तक ला देता हो। और फिर आता है म, म का अर्थ हुआ मम, चंद्रमा, जो शीतल भी हो, जो प्रेम भी करता हो। इसलिए जानते हो चंद्रमा को मामा कहते हैं हम लोग, चंद्रमा चंदा मामा कहते हैं ना, उसमें दो मां है, जो शीतलता भी देता है, प्रकाश भी देता है। देख लेना, सूरज प्रकाश देता है लेकिन उसमें शीतलता नहीं है, उसमें शीतलता नहीं है, और चंद्रमा में शीतलता है। इसलिए सूरज को मामा नहीं कहा गया, चंदा को मामा कहा गया। तो जो शीतलता भी देता हो, हमें प्रेम भी देता हो, जो हमसे प्रेम भी करता हो, इसलिए हनुमान जी को जब भी कोई कष्ट होता है तो आदमी तुरंत हनुमान जी को सुमिरता है। और फिर आता है आ, और मतलब अग्नि, हनुमान म के बाद आ, आ मतलब अग्नि, जो अग्नि जो हमारे सारे विकारों को जला दे, हमारे सारे बुरे संस्कारों को जला कर राख कर दे, खत्म कर दे, हमारे जन्मों जन्म के कर्म बंधनों को जला दे, मिटा दे। और फिर आता है न, ए न मतलब नारायण, ए न मतलब जो हमें शीतल करके, प्रेम पूर्वक शुद्ध करके, हमारे सारे विकारों को मिटाते हुए, सारे दुश्मनी को खत्म करते हुए, हमारे सारे बुरे संस्कारों को जलाते हुए, धोकर पवित्र करते हुए, ऊपर उठाकर नारायण से, ऊपर उठाकर राजा बनाकर नारायण से मिला दे, उसी को हनुमान कहते हैं, उसी को हनुमान कहते हैं। हनुमान का अर्थ यही है। तो मेरे बंधुओं, आज हम उसके जयंती पर आए हैं कि तुम उपकार सुग्रीव पर किन्ना, राम मिलाई राजपद दिन्ना, जो मुक्ति के लिए भगवान से भी मिलाता है और राजा भी बनाता है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जब भी किसी को कोई पद मिल जाए, अधिकार मिल जाए, तो तुम अपने अधिकारों को मत पकड़ना, अपने कर्तव्यों को पकड़ लेना। अधिकार मिलते ही आदमी को अधिकारों को नहीं पकड़ना चाहिए, अपने कर्तव्यों को पकड़ लेना चाहिए। मैं तुम अपने कर्तव्य को पकड़ लेना। कोई भी आदमी जो भी है, अगर अधिकार मिला तो तुम अधिकार को मत पकड़ो, अपने कर्तव्यों को पकड़ लो। और अगर तुम अपने कर्तव्य को करने लगे तो तेरा अधिकार और बढ़ता जाएगा। और अगर तुम अपने अधिकार को पकड़ लिए तब क्या होगा, एक दिन तेरी अधिकार घटती जाएगी और जो कर्तव्य करना जाना उसका अधिकार भी बढ़ते जाता है और बड़ा होता है। महावीर राजा हो गए, एक राज्य के राजा हो गए, उन्होंने अपने कर्तव्यों को पकड़ लिया तो समष्टि के राजा हो गए, संसार के राजा हो गए, सृष्टि के राजा हो गए, युग के राजा हो गए। बुद्ध ने अपने कर्तव्यों को पकड़ लिया, राम ने अपने कर्तव्यों को पकड़ा, कृष्ण ने अपने कर्तव्यों को पकड़ा, और हनुमान ने अपने कर्तव्यों को पकड़ा। कर्तव्य पकड़ लो ना। तो एक बात बताओ, राम के युग में सबसे पावरफुल आदमी कौन था? हनुमान सबसे पावरफुल आदमी थे, लेकिन एक जगह भी हनुमान अपने अधिकार को दिखाए हैं कहीं भी नहीं। और जानते हो, जब राम जाने लगे तो सब कुछ देने लगे, किसी को कुछ दिए, किसी को पद दे दिए, किसी को पैसा दे दिए, किसी को धन दे दिए, किसी को कुछ निकाल के दे दिए, किसी को कुछ दे दिए, सबको दे दिए। तब हनुमान की बारी थी, हनुमान आए, हनुमान को राम बुलाए, बोले हनुमान अब तो मैं सब कुछ सबको दे दिया, तेरे को तो देने के लिए कुछ बचा ही नहीं, तुम्हें क्या चाहिए बोल, मैं जैसे भी दूंगा। तो हनुमान रोने लगे, बोले प्रभु अब आपसे क्या मांगू, मांगना बाकी रहा, जब आप ही मुझे मिल गए, जब राजा ही मुझे मिल गया, तो राज की चीजों को क्या मांगू, और प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले नहीं कुछ मांग लो। तो बोले प्रभु मैं जो मांगूंगा आप दे देंगे। तो राम बोले कि एक क्या बड़ी बात है, तू मांग ले, तेरे लिए सब कुछ जो मांगोगे वो दे देंगे। तो कहते हैं हनुमान जी कहे प्रभु आपने किसी को कुछ धन दिया, किसी को मैनेजर बना दिया, किसी को कुछ कर दिया, किसी को राजा बना दिया, किसी को पद दे दिया, प्रभु आप मुझे अपना दोनों पग दे दीजिए। आपने किसी को राजा बनाया, किसी को कुछ राज दिया, विभीषण को लंका का राजा बना दिया, सुग्रीव को उसका राजा बना दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, आप अपना दोनों मुझे पग दीजिए। राम रोने लगे, आंखों से आंसू आने लगा और कहा जा हनुमान ले ले। यही कारण है कि जहां भी दोनों पग राम का तो हनुमान के पास है, राम की दोनों पांव हनुमान के पास है, तो जहां भी राम की मंदिर होती है वहां निश्चित हनुमान की मूर्ति होती है। इसलिए कि पग तो हनुमान के पास है, राम की पूजा कैसे होगी अगर हनुमान को नहीं लाओगे? तो बिना पग के राम रखना पड़ेगा तुमको, बिना पांव के राम। और हम पूजा चरणों के करते हैं, तो चरण हनुमान के पास है, दोनों पांव ले लिए। और हनुमान के मंदिर में राम की मूर्ति नहीं है तो देख लेना स्वामी के घर में उसका सेवक रह सकता है, लेकिन सेवक के घर में स्वामी का स्थान नहीं है, नहीं है, वहां नहीं जाता है। तो अगर हमारी सेवा इतनी बढ़ जाए, हमारी भक्ति इतनी बढ़ जाए, हमारा कर्तव्य इतना बढ़ जाए, कर्तव्यों के और अपने भक्ति के बल पर एक बंदर भगवान हो गया, देख लो बंदर भगवान हो गया। और देखना कृष्ण का, कृष्ण के युग में कृष्ण का सबसे प्रिय कौन रहा? अर्जुन। अर्जुन नरश्रेष्ठ है, नरश्रेष्ठ द बेस्ट पर्सनालिटी, द बेस्ट पर्सन, मनुष्य में सबसे श्रेष्ठ है अर्जुन, देवता समान है, नर और नारायण अर्जुन इतना बड़ा। और कृष्ण भी पूर्ण अवतार हैं, राम को आंशिक अवतार कहा गया। कितने कला लेकर आए थे राम? कितने कला? हाँ मेरे बंधुओं 12 कला। और कृष्ण पूरे के पूरे, हाँ सूर्य पूरे के पूरे। मेरे बंधुओं एक पहला समय है कि जब नारायण नारायण के जैसा पूरी की पूरी धरती पर उतर गया, पूरा का पूरा। हमेशा नारायण अपने छोटे रूप में आया, छोटे रूप में, अलग अलग रूप में, पहली बार हुआ है कि नारायण पूरा का पूरा उतर आया। इसलिए कृष्ण में देखने से बहुत कमी दिखती है, लेकिन आंख मनुष्य का है, बुद्धि मनुष्य का है, भगवान को देखते हैं तो उल्टा पुल्टा दिखता है। इसलिए कि हमारी आंखें भी कितना दिखती है, हमारे देखने की एक सीमा है। अभी यहाँ रात हुआ है, अमेरिका में दिन हुआ होगा, हम बोलेंगे गुड इवनिंग, वो बोलेगा गुड मॉर्निंग, हम दोनों में कौन सही कौन गलत, तो मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे बंधुओं कृष्ण आए और अर्जुन उनका भक्त बना। अर्जुन कृष्ण को बहुत माना, कृष्ण ने रथ चलाई, अर्जुन से युद्ध कराई, कृष्ण ने भी अधर्म को मिटाया, धर्म को स्थापित किया। एक बात बताओ नरश्रेष्ठ अर्जुन, एक आदमी बताओ अर्जुन जयंती कब है? कोई मनाता है? कोई भी मनाता है? किसी को नहीं मालूम, जरूरत ही नहीं समझते हम अर्जुन जयंती की, तो मालूम कैसे करेंगे कि पूजा ही नहीं करता है। तो नरश्रेष्ठ अर्जुन की भी पूजा नहीं हुई, कोई जयंती नहीं मनाता है, लेकिन देख एक हनुमान जो बंदर, मनुष्य भी नहीं, मनुष्य से भी नीचे बंदर, वो भगवान बन गया। और हनुमान जयंती कोई भूलता है? सब आए हो, कोई भूलता है हनुमान जयंती? तो बंदर भगवान बन गया, लेकिन एक नरश्रेष्ठ उसकी पूजा नहीं हुई। कारण यह था कि अर्जुन पूछ पूछ कर विश्वास करता था, प्रश्न कर प्रश्न पर प्रश्न करता था गीता में, और हनुमान मैन भी सरेंडर थे, पूरे के पूरे समर्पित थे। तो देख लेना बंदर भगवान हो गया, नरश्रेष्ठ भगवान नहीं हुआ। तो मैन विथ इंटेलिजेंट, अर्जुन मैन विथ इंटेलिजेंट था, पूछ पूछ कर शक पर शक करता था, बात पर बात, एक कैसे होगा, एक कैसे होगा, एक कैसे होगा, एक किस तरह से होगा, और पूछता था और पूछता था, मतलब प्रश्न पर प्रश्न करता था। और तब मानता गया मानता गया। और हनुमान तो कुछ भी नहीं, जो है सो हर काम में जय श्री राम करते, अपने बोल देते थे जय श्री राम, हाँ बोल दिया जय श्री राम करते अपने, और बोल देते थे जय श्री राम। लेकिन ऐसे नहीं कि तुम किसी को पिटाई कर बोल दो जय गुरुदेव, उल्टा काम कर दोगे। हनुमान अच्छा काम करते थे, हनुमान सही काम करते थे और सही काम के जय श्री राम बोलते थे, नहीं तो तुम भगवान का नाम हंसा दो जाकर के। उल्टा कर, अब जैसे आज लोग गलती काम करके बोल देते हैं ना भगवान के जय हो, तो उल्टा काम हो जाता है, नाम खराब होता है, उससे नास्तिक पैदा हो जाते हैं, धर्म के विरोध पैदा होने लगता है। तो मेरे बंधुओं हर काम हनुमान करते थे लेकिन बोल देते जय श्री राम। और जानते हो राम इसलिए राम हो गए कि उनको हनुमान मिल गए। और इस युग में राम मिलना आसान है, हनुमान मिलना मुश्किल है। और जिसको मिल गया हनुमान वो बन गया राम, जिसको मिल गया हनुमान वो बन गया राम। मेरे बंधुओं इस युग में अगर तुम्हें अच्छा सेवक मिल गया है, अच्छा ईमानदार सेवक मिल गया है, तो उसको गंवाना मत कभी। तुम भाग्यवान हो कि तुम्हें ईमानदार कोई सेवक मिल गया, उसको मत गंवाना, मत गंवाना। जानते हो साईं बाबा से लोग जाके कहते थे, साईं बाबा का एक भक्ता वासुदेव तो बहुत गुस्सा वाला था, बोलते थे बाबा आप ऐसे आदमी को क्यों रखे हो, खड़ूस आदमी को, इतना गुस्सा वाला है, इतना पर इसको निकाल दीजिए। बाबा कहते थे जानते हो अगर इसको मैं निकाल दूं तो दुनिया जला दे, तो कम से कम मेरे पास रखा हूं तो दुनिया जलती तो नहीं है। गुरु और भगवान में एक अंतर है मेरे बंधुओं। जानते हो एक बार एक आदमी के एक बच्चे के घर गुरु और भगवान दोनों पहुंच गए। वो बाहर निकला, चरणों में आने लगा, तो दौड़े दौड़े भगवान के चरणों में आके गिरा। भगवान कहे रुक रुक, मेरे चरणों में नहीं, पहले गुरु के चरणों में जाओ। गुरु के चरणों में दौड़ा हुआ गया तो गुरु बोले नहीं नहीं नहीं, भगवान लाया हूं, भगवान के चरणों में जाओ जाओ। तो भगवान के चरणों में, भगवान बोले नहीं, इस भगवान को भी तो तेरे गुरु ही लाया, गुरु ही बताया, पहले गुरु के चरणों में जाओ, गिर। तो जब वो गुरु के चरणों में जाके गिरा तो गुरु कहे नहीं नहीं, मैं बताया लेकिन तुमको बनाया कौन, भगवान ही तो बनाया, भगवान ही तो सब कुछ किया, तो इसलिए भगवान के चरणों में जाओ, भगवान के चरणों में जाओ। मेरे बंधुओं वह फिर भगवान के चरणों, भगवान बोले रुक, तो मैं तुम्हें बनाया हूं, सब ठीक है, मेरे चरणों में आ गए, मेरे यहां अगर सबसे पहले आ गए तो मेरे यहां एक न्याय की पद्धति है, अगर तुमने अच्छा किया है, अच्छा कर्म किया है तो तुमको स्वर्ग मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छी योनि मिलेगी। लेकिन अगर तुम बुरे करके आए हो तो मेरे यहां दंड का प्रावधान भी है, दंड मिलेगा, 84 लाख योनियों में भटकाए जाओगे, फिर अटकोगे, फिर तेरी आत्मा को कष्ट होगा, फिर नरक मिलेगा, फिर अटक जाओगे, दंड का भी प्रावधान है। लेकिन ये गुरु है ना, ये बड़ा भोला है, इसके अगर चरणों में इसके पास पहले चले गए तो तुम जैसे भी हो, जिस तरह से हो, ये तुम्हें गले लगा लेगा और तुमको शुद्ध करके, पवित्र करके मेरे चरणों में रख जाएगा, जहां इनाम ही इनाम है। यही कारण है कि मेरे बंधुओं, गुरु किसी को भगाता नहीं है, गुरु निखारता है, जो भी मिला गले लगाया, उसको अच्छा करना चाहता है। तो मेरे बंधुओं, जानते हो धर्म सत्य से शुरू होता है, धर्म सत्य से शुरू होता है, दया पर थोड़ा ठहरता है, प्रेम पर जुआ होता है, त्याग पर प्रौढ़ होता है और मोक्ष पर खत्म हो जाता है। सत्य से धर्म शुरू होता है, सत्य से शुरू हुआ, दया पर थोड़ा ठहरा, प्रेम पर जुआ हुआ, त्याग पर प्रौढ़ हुआ और मोक्ष पर आकर खत्म हो जाता। दया मतलब सेवा भी है, सेवा दया सब साथ में आता है। मेरे बंधुओं तो एक चीज जान लेना, तुम आए हो गुरु के पास, प्रेम आया, दया आई, त्याग आया, फिर मोक्ष, उसके पहले मत भाग जाना, वो लेकर ही जाना। और मेरे बंधुओं, दुख सुख जीवन में आता है, हमेशा तुम सोचो कि हमें सब सुख ही मिल जाए, वो संभव नहीं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर आंसू न होते इस आंखों में तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती, दुख दर्द न होते जीवन में तो खुशी की कीमत पता न होती, बेवफाई न की होती वक्त ने तो वफाई की हमें चाहत न होती, ऐ अगर मांगने से पूरी हो जाती सारी मुरादें तो भगवान की इस जमी पर फिर से कभी जरूरत न होती। अगर मांगने से पूरी हो जाती सारी मुरादें तो भगवान की इस जमी पर फिर से कभी जरूरत न होती। तो कौन उसे याद करता। इसलिए कुछ मुरादें बाकी रहती है। और मैं कहा ना, फेथ इज आई नो आई विल गेट व्हाट आई वांट, फेथ इज नॉट आई विल गेट व्हेन आई वांट। तो मेरे बंधुओं, एक चीज जानना, तुम भी अपने भक्ति को लाना, और एक बार जब तुम अपने भक्ति पर भक्ति को लाओगे तो जीवन सुंदर होगा। आज हनुमान जयंती, आज भगवान के जयंती पर हम आए हैं, हमारी भी भक्ति इतना हो कि जीवन रूपी भव सागर से हम पार हों। हम जन्मदिन पर आकर गिफ्ट देते हैं और रिटर्निंग गिफ्ट भी लोग अपने जन्मदिन पर लोगों को देता है, तो हम सब अपनी भक्ति रूपी गिफ्ट को हनुमान के चरणों पर चढ़ाएं, और रिटर्निंग गिफ्ट हमेशा द बेस्ट होता है, और फल रूपी गिफ्ट हनुमान हमको देगा, हमको हनुमान देंगे। तो मेरे बंधुओं, तुम अपनी भक्ति रूपी गिफ्ट, अच्छी भक्ति रूपी गिफ्ट हनुमान को चढ़ा दो, और फल रूपी गिफ्ट हनुमान से पालो। और इतनी भक्ति करना भगवान से कि कहते हैं आसान है जाना महफिल से, कैसे जाओगे निकल कर मेरे दिल से। आसान है जाना महफिल से, कैसे जाओगे निकल कर मेरे दिल से। इसलिए कि मैं भी तुमको दिल से प्रेम करता हूं, तो मेरे दरवाजे से, मेरे महफिल से निकल कर तो जाना आसान है, लेकिन दिल से निकल कर कैसे जाओगे।